ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो जैसे कि कल हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर रूप से सृजन और सृष्टि के बारे में हमें बताया, और आज हम उन श्लोकों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जिन श्लोकों के द्वारा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट किया, संतुष्ट किया। तो आइए देखते हैं कि इन श्लोकों में ऐसा क्या है कि जिसे सुनने के पश्चात स्वयं भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो गए। तो पहला श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम् तमहं भजामि। इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि जहां लक्ष लक्ष कल्प वृक्ष तथा मणिमय भुवन समूह विद्यमान है, जहां असंख्य कामधेनु गौवे है, शत सहस्त्र अर्थात हजारों हजारों लक्ष्मियां यानी गोपियां प्रीतिपूर्वक जिस परम पुरुष की सेवा कर रही है, ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। वे बताते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, मैं उन गोविंद का भजन करता हूं जो कि आदि पुरुष है। और वे कैसे आदि पुरुष है उसका उन्होंने पूरी तरह से वर्णन पिछले 28 श्लोकों में किया है, क्योंकि भगवान गोविंद को आदि पुरुष क्यों कहना है? ऐसा नहीं कि वे केवल उनकी भावना हो गई इसलिए कह रहे, बल्कि उन्होंने पूरी तरह से उसका विश्लेषण किया है कि वे क्यों आदि पुरुष हैं। और यहां पे हम देखेंगे कि वे क्यों भगवान के उन लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं जैसे कि सुरभिर अभिपालयंत यानी गोचारण की, उसमें ऐसा क्या आनंद है? क्योंकि भगवान की तो कई लीलाएं हैं, तो फिर विशेष करके इन लीलाओं के ऊपर ही ब्रह्मा जी क्यों अपना मन केंद्रित कर रहे हैं, ऐसा क्या है इन लीलाओं में? श्रीपाद जीव गोस्वामी अपनी टीका में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने चिंतामणि श्लोक से प्रारंभ कर 29 श्लोकों से आदि पुरुष श्री गोविंद की स्तुति की, जिसमें उनके नाम रूप गुण लीला महिमा ऐश्वर्य माधुर्य और धाम आदि का वर्णन हुआ है। तो आगे जो हम 29 श्लोकों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उन सब में भगवान के नाम रूप गुण लीला ऐश्वर्य माधुर्य इन सारे विषयों का वर्णन किया गया है। और यहां पे हम देखते हैं विशेष करके धाम के बारे में बताया गया है, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो अनंत है, हरि अनंत, हरि गुण हरि लीला अनंत। कहा जाता है कि भगवान शेष अपने अनंत मुखों से, अनंत काल से भगवान की अनंत लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, और वे अभी भी चली रही है लीला। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं नवकिशोर नटवर और नित्य नवायमान है, और इसलिए उनकी लीलाएं भी नित्य नूतन नवायमान है, और हर क्षण प्रति क्षण वे बढ़ती जाती है। उन लीलाओं की अलग अलग स्तरों में विभाजन किया गया है, और हर एक व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार, गुणों के अनुसार, और उस व्यक्ति के भगवान के प्रति जो स्नेह है, जो रस है, उस रस के अनुसार उन लीलाओं का विभाजन होता है, जिसमें वात्सल्य है, सख्य है, और मधुर रसाश्रित परिगण है। श्री कृष्ण के बाल्य, पौगंड तथा किशोर अवस्था की लीलाओं के एक ही साथ साथ अनेक लीलाओं का भगवान आस्वादन करते हैं, और भगवान के भक्त भी आस्वादन करते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि दो प्रकार की आराधनाएं हैं, एक है स्वारस्य की और दूसरी है मंत्रो उपासनमय। श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन स्थित लीलाएं बहुत से स्थानों पर बहुत प्रकार से होती है, अतएव उन सभी लीलाओं का स्मरण तथा श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के द्वारा जो उपासना होती है वह है स्वारस्य की उपासना कहलाती है। और श्री कृष्ण के लीला पीठ में एक स्थान पर स्थित एक लीला में चित्त को पूरी तरह से केंद्रित करके उसका श्रवण मनन और अर्चन आदि रूप जो मंत्र साधना है वह मंत्रोपासन में। तो एक है स्वारस्य की और दूसरी है मंत्रोपासन मयी। फिर ब्रह्मा जी विशेषकर से सर्वप्रथम श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं में से वसुदेव संकर्षण आदि परम व्योम लीला, कारणार्णवशायी पुरुषावतार की लीला, मत्स्य कुर्म आदि नैमित्तिक अवतारों की लीला, ब्रह्म शिवादि गुणावतारों की लीला, पृथ्वी व्यास आदि आवेश अवतारों की लीला, सविशेष परमात्मा आदि की लीला, निर्विशेष ब्रह्म आदि अनंत क्रीड़ा में भगवान की लीलाओं में से सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की गोकुल वृंदावन की लीलाओं की स्तुति करते हैं, क्योंकि यही उनका मनोभीष्ट है। अगर आप कभी किसी व्यक्ति को पूछेंगे या किसी भक्त को पूछेंगे कि जो बालाजी का जो मंदिर है आंध्र प्रदेश में, उस तिरुपति बालाजी के मंदिर के अंतर्गृह में अगर ऊपर छत पे देखा जाए तो बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वहां पे पत्थर में आलेख किया गया है, चित्रित किया गया। तो एक बार श्रीपाद रामानुचार्य के एक शिष्य ने उनको पूछा कि विशेष करके इन बाल लीलाओं का चित्रण यहां पे क्यों किया गया है? तो वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं इवन महाविष्णु को भी आकर्षित कर लेती हैं, और महाविष्णु की भी छोड़ दीजिए, भगवान को स्वयं ही वे लीला आकर्षित करती हैं। तो आप सोचिए फिर भक्तों को क्यों नहीं आकर्षित करेंगे? और इसीलिए यहां पे चतुर्मुख ब्रह्मा भगवान की उन गोकुल वृंदावन की लीलाओं के वर्णन से ही भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। और वे कैसी लीला है वहां की? तो सुरभीर अभिपालयंतम, अर्थात गायों को चराने के लिए उन्हें गोष्ठ से वन में लाते हुए उन्हें हरी हरी कोमल घास चराते होते, पावन सरोवर आदि में पानी पिलाते और स्नान कराते, पुनः उन्हें गोष्ठ में लौटा लाते हैं। इस प्रकार अतिशय प्रीतिपूर्वक उनकी रक्षा और पालन करते हैं। कभी एकांत में रहस्यमय विलक्षण लीलाएं भी करते हैं, और वे विलक्षण लीलाएं कैसी है उनका वर्णन करते हुए वे यहां पे कहते हैं कि लक्ष्मी शत सहस्त्र अर्थात असंख्य कल्प वृक्षों से समावृत चिंतामणि निर्मित भवन में अनंत व्रज सुंदरियों के उल्लास पूर्वक परिसेवित आदि पुरुष का मैं भजन करता हूं। तो यहां पे लक्ष्मी शब्द से गोपरपणियों को ही समझना चाहिए, क्योंकि गोलोक वृंदावन में केवल गोपियां ही रह सकती है, अन्य किसी का वहां पे प्रवेश इतना सुलभ नहीं है। और इसीलिए यहां पे इस श्लोक में वे हमें समझाते हैं कि भगवान की ये जो सुंदर लीला है ये असामान्य है। जैसे कि चिंतामणि शब्द से यहां पे चिन्मय रत्नों को समझना होगा। माया शक्ति ने जैसे जड़ पंचभूतों के द्वारा जड़ शक्ति की सृष्टि की है, वैसे ही चित शक्ति ने चिद्रूप वस्तु रूप चिंतामणियों द्वारा चित जगत की रचना की है। और उसमें भी विशेष बात यह है कि गोलोक के भगवत भवनों में निर्माण कार्य में व्यवहृत यानी उपयोग में लाई गई सामग्री रूप चिंतामणियां जो है वो साधारण चिंतामणियों की अपेक्षा अधिकतर दुर्लभ और उपादेय है। साधारण कामधेनु का जब कोई दोहन करके वह जब दूध देती है और गोलोक की कामधेनुओं के थन से शुद्ध भक्त जीवों की मुख प्यास मिटाने वाला चिदानंद स्त्रावी प्रेम प्रसन्न रूप दुग्ध समुद्र सदैव झरता रहता है। और यहां पे जैसे लिखा गया है कि लक्ष्य लक्ष्य और शत सहस्त्र शब्दों का तात्पर्य है कि अनंत असंख्य संख्या से है। और वे कैसे है संभ्रम यानी प्रेम से परिलुप्त होकर प्रेम से पूरी तरह से अपने आप को आप्लवित कर ये भगवान की सेवा में लगे। और वे कौन है तो लक्ष्मी शब्द से सुंदर गोपियां ही हमें समझनी चाहिए, ऐसे जीव गोस्वामी पाद हमें बताते हैं। और आदि पुरुष का अर्थ क्या है कि भगवान श्री गोविंद देव ये आदि है। और ये कैसे हमने देखा कि उनके केवल इच्छा मात्र से ही उनके स्वांश बलराम जी आते हैं, बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह आता है, पहले चतुर्व्यूह में से संकर्षण में से फिर महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से गर्भोदकशायी विष्णु, फिर वे गर्भोदकशायी सारे इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो हम पीछे मुड़ के जाके देखते हैं तो सबके स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते समय कहते हैं कि मैं उस आदि पुरुष भगवान जो है मैं उनकी भक्ति करता हूं। गोपाल तापनी उपनिषद में भी ब्रह्मा जी ने एक भगवान की स्तुति की है जिसमें वे कहते हैं नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, जिनके विज्ञान बल से सब कुछ प्रभासित होता है उस विज्ञान के आधार पर आप स्वयं हैं, आप समस्त आनंद के मूलाधार हैं और आप सबके आकर्षण और आनंद प्रदाता गोपीनाथ है और गोविंद है, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। और आप कैसे हैं, बरहा पीड़ाय रामाय रामाय कुंठ मेदसे रमा मानस हंसाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभो, आपके नयन युगल पद्मपत्र की भांति विस्तृत है, आपके गल देश में वनमाला विलंबित है। हे गोविंद, आपके नाभि कमल से जगत सृष्टि का उद्भव होता है, आप गोपियों के प्राणपति है, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार है। और कैसे आप, अपने मयूर पिच्छ युक्त चूड़ा आपके मस्तक पर सुशोभित किया है। आप सबका मनोरंजन करते हैं, आपके अंदर कोई कुंठा नहीं है, आप अपरिमेय ज्ञानमय, आप गोपियों के हृदय रूप मानसरोवर में विहार करने वाले राजहंस है। अतएव गोविंद, मैं आपके श्री चरण कमलों में मेरा प्रणाम करता हूं और कृपया आप इस मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। और क्या कर रहे भगवान? तो यहां पे बताते हुए कि वेणु वादन शीलाय गोपालाय निमर्दिने कालिंदे कुललोलाय लोलु कुंडलधारिने। हे श्री कृष्ण, आप नित्य वृंदावन विहारी है, आप मधुर वंशीवदन करते हुए भक्तों को निरंतर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आप वेद पृथ्वी और गायों की रक्षा करते हैं एवं गोप गो और गोपी और गायों का पालन करते हुए गोपाल रूप में विराजमान है। कालिंदी कुललोलाय, दुष्ट कालिया और कुललोलाय जो असुरों के कुल में उत्पन्न है, अघ बक आदि असुरों का संहार कर आप क्या कर रहे हैं? गो गोप समूह को जीवन दान दे रहे हैं। तो ये है भगवान जो यमुना के तट पर विहार करते हैं और जिन्होंने चंचल कुंडल धारण किए हुए, और ऐसे गोविंद को ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो अलग अलग स्थानों पर प्रार्थनाएं अर्पण की है, उन अलग अलग प्रार्थनाओं में उन्होंने अपने विचित्र भावों के तरंगों को हमारे सामने रखा हुआ है, क्योंकि भगवान और उनका मनोहरी ये सौंदर्य ये सबको अपने प्रति आकर्षित करने वाला है, और इसी सौंदर्य के कारण सारे जीव भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। फिर अगले श्लोक में वे वर्णन करते हैं कि क्या कर क्या रहे हैं वहां पर भगवान। और भगवान वो कार्य कर रहे हैं जिसमें उन्हें सदैव आनंद आता है। और कौन सा कार्य है वो? वे कहते हैं वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमणीय विशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। वे कहते हैं कि वेणु क्वणंतम, जो वेणु वादन रत है, अरविंद दलायताक्षम, कमल दल सदृश जिनकी आंखें है, और बरहावतम बरहावतंसम यानी जिन्होंने मयूर पिच्छ अपने मस्तक पे धारण किया हुआ, असिताम्बुद सुंदरांगम, असिताम्बुद सुंदरांगम। असिताम्बुद यानी क्या है? कि नवीन जलधर, नवीन जलधर कौन है? तो नवीन नील जलधर यानी नूतन आकाश में जब नए बादल आते हैं तो उनकी उनका जो नील वर्ण है वो हम शब्दों में नहीं वर्णन कर सकते। वो कौन सी छटा है ये देखे बिना हम उसका शब्दों में वर्णन करना हमें कठिन है। तो वो भगवान का अंग है, उसके सदृश भगवान के अंगों का वर्ण है। और कैसा ही है? तो कहते कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोक, कोटि कोटि कंदर्पों को परास्त करने वाला, उनका वो अवर्णनीय सौंदर्य है, उनकी शोभा ऐसी है कि वे कंदर्प भी उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं ऐसे जो गोविंद है उनको मैं प्रणाम करता हूं। शिव गोस्वामी विपाद उनके टीका में बताते हैं हमें, वहां का सहज कथन ही गान है, गमन अर्थात चलना फिरना ही नृत्य है, वंशी ही प्रिय सखी है इत्यादि आगे जो वर्णन किया जाएगा उसी रीति के अनुसार पूर्व श्लोक में कथित चिंतामणीय भवन की अर्थात गोलोकगत विलक्षण पीठ की स्वारस्य की लीला का वर्णन करने के पश्चात एक स्थान में अनुष्ठित गानादि रहित द्वितीय पीठगत बृहद मध्यान्हनीय मंत्रोपासनीय लीला का वर्णन वेणुम क्वणंतम आदि श्लोकों से कर रहे हैं, जो सुमधुर स्वर से वेणुवादन में तत्पर है, जिनके नेत्र द्वय पद्मपत्र सदृश विशाल और स्निग्ध दृष्टि संपन्न है। कैसे सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप सोचिए कि ये स्निग्ध दृष्टि कैसे होगी। जैसे हम कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति जिसके आंखें ऐसी जल भरी हो उनको हम स्निग्ध कहते हैं, कि जिनको देखने के पश्चात चित्त आकर्षित हो जाता है उन आंखों को, और ऐसी स्निग्ध दृष्टि तो उन आंखों को निहार के क्या क्या हमारे हृदय का भाव हो सकता है। फिर आगे यहां पे कहते हैं वे कि मस्तक पर मयूर पिच्छ निर्मित चूड़ा और नव जलधर जैसी सुंदर अंग कांति है, करोड़ों करोड़ों कंदर्पों के रूप सौंदर्य को तिरस्कृत करने वाली जिनकी अंग प्रभा है। कहते हैं उन गोविंद को मैं भजन करता हूं। तो हमारे भजनीय, हमारे आराध्य, उनका रूप, उनकी छवि कितनी सुमनोहर है, कितनी सुंदर है। तो ऐसे सुंदर रूप को, ऐसे सुंदर छवि को छोड़ के कैसे मन और किसी वस्तु विशेष पे आकर्षित हो सकता है। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है कि हमारे भजनीय, हमारे आराध्य भगवान कितने सुंदर हैं। और यहां पे भगवान के उस अतुलनीय शोभा का वर्णन किया गया। हालांकि उन्होंने भगवान के हर एक अंग प्रत्यंग का तुलना इस भौतिक जगत के वस्तुओं से की है, लेकिन अब देखिए ये भौतिक जगत की जो वस्तुएं हैं, जो हमें दिखाई देती है, जिनको देखने के लिए हमारी आंखें तरसती है, लालायित हो जाती है, उनका वर्णन उन्होंने भगवान के अंग प्रत्यंगों से किया है। क्यों? क्योंकि और इसके सिवा सुंदर हो ही नहीं सकता। हमारे इन बद्ध अवस्था में इससे सुंदर और कुछ हमें दिखाई नहीं सकता। लेकिन भगवान का जो सुंदर है, जो भगवान का जो स्वरूप है, उसका वर्णन करने के लिए निरुक्ति में शब्द ही नहीं है। तो कैसे उनको हम जाने, उस रूप को केवल देख के ही हमें आनंद लेना है, उसका वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि शब्द बहुत ही छोटे हो जाते हैं उनके। जैसे ये तो वर्णन गोलोक वृंदावन स्थित भगवान की जो नित्य लीलाएं चल रही है, उन नित्य लीलाओं का ब्रह्मा जी यहां पे करते हैं। अब सोचिए श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में विदुर जी और उद्धव का जो संवाद है, जहां पे विदुर जी तीर्थाटन से वापस आके उद्धव जी को मिलते हैं, तो वे पूछते हैं कि हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं। तो उस समय जो वर्णन किया गया है, अब ब्रह्मा जी ने जो वर्णन किया है इसमें साम्यता देखिए। वहां पे वे कहते हैं कि तथैव चान्ये नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम नयनाभि पीबंदो नयनाभिरामम पार्थास्तु पूता पद्मपरस्य। ये श्लोक में बहुत सटीक रूप से वर्णन किया गया। वे कहते हैं यहां पे कि तथैव चान्ये नरलोक वीरा, ये वर्णन है उस समय का जिस समय में कुरुक्षेत्र पे युद्ध हो रहा था। और आप सोच सकते कि युद्ध भूमि ऐसा कोई रमणीय स्थान नहीं है कि जहां पे आप कुछ देखने के लिए या टहलने के लिए चले जाओ, और कोई जाएगा तो उसको हम मूर्ख ही कह सकते। लेकिन यहां पे वे वर्णन कहते हैं कि तथैव चान्ये नरलोक वीरा, कि वहां पे अनेक नर लोक वीर थे और क्या कर रहे थे, यह आहवे कृष्ण पदारविंदम, कहते ना कि आह भर रहे थे। अगर सही में कुछ ऐसा मन को लालायित करने वाला लोभनीय ऐसा कुछ हो तो कैसे, आह क्या सुंदर है, ऐसे कहते ना। तो वही कहते कि यह आहवे, तो ये सारे आहवे का अर्थ ये भी कि ये देख रहे थे। कैसे देख रहे थे, वे कहते कि नयनाभि पीबंतो नयनाभि रामम, मतलब अपने आंखों से वे पी रहे थे उस द्रव को कि जो नयनों को आनंद दे रहा था। और वो क्या है द्रव, वो नयनों को आनंद देने वाला क्या है, वो कहते कि यह आहवे कृष्ण मुखारविंदम, भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद वे पूरी तन्मयता से देख रहे थे, आस्वादन कर रहे थे भगवान के रूप माधुरी का। कहां पे, युद्ध भूमि पे। तो सोचिए यहां पे जो वर्णन किया गया भगवान का कि गोलोक वृंदावन में खड़े हैं और वे वेणुम कुणंतम अरविंद, वहां का जो वर्णन है, क्या इसकी हम कहीं तुलना कर सकते हैं, क्या इसका हम कोई अनुमान लगा सकते हैं, कदापि संभव नहीं है। इसका केवल आस्वाद ले सकते हैं। और कैसे, क्योंकि हमारे इंद्रिया जो है वो तो अपूर्ण है, उससे पूर्ण को हम जान नहीं पाते। इसलिए शास्त्र कहता है कि श्रुतेस्तु पंथ, भगवान को जानने का एक पंथ है, एक मार्ग है, और वो कौन सा है, श्रुत, श्रुत सुनना। भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में भगवान के भक्तों के द्वारा जब हम सुनते हैं तो सही रूप में उनका हम रसास्वादन कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रेम करता है भगवान से, वो वही पूरी तन्मयता से भगवान के हर एक वस्तु विशेष का, उनके अंग प्रत्यंग का सूक्ष्मता से वर्णन कर सकता है। कई बार हम अचंभित हो जाते हैं कि कई भक्त लोग जब भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी ही ने ही चतुर्थ स्कंद में जब प्रचेतास को भगवान शिव जी भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं, तो उस समय जो भगवान के अंग प्रत्यंग पे जो अलग अलग आभूषण दिए गए हैं, उन आभूषणों के वर्णन आप सुनोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इतनी बारीकता से, सटीकता से, सूक्ष्मता से भगवान के उन अलंकारों का वर्णन किया गया वहां पे। यानी जब वे दर्शन करते हैं भगवान का, तो कितना मन उसमें अपना लगाते हैं कि हर एक वस्तु भगवान के चरण कमलों में कौन से नुपुर है, उन नुपुरों में कितने मणि है और वे कैसे हिल रहे हैं। फिर उनका पीताम्बर जैसा जो अधो वस्त्र उन्होंने पहना हुआ है, वो कैसे बिजली की जैसे चमक रहा है। अपने कटी प्रदेश में उन्होंने सुंदर सी मोतियों की माला जो लटकाई हुई है, और उन लटकन, उस जो लटकन है वो भगवान के चलने के कारण किस प्रकार से आगे पीछे हो रही है और अपने मन के हिंदोलों में हिल रही है, इसका सुंदर वर्णन है। और ऐसा वर्णन केवल एक प्रेमी ही कर सकता है, हर एक के बस की बात नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान के बारे में सुनना है तो भगवान के, जैसे कहते कि सार ग्राही सारंग, सारंग से सुना सार क्या होता है। और इसलिए इन सुंदर प्रार्थनाओं को, इन सुंदर लीलाओं को हमें सुनना चाहिए, अन्यथा अपने बुद्धि के द्वारा इन चीजों को हम समझ नहीं सकते। और कई 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 श्लोक है शास्त्र में भगवान भगवान के उस मनोहर अतुलनीय नयनों को आनंद देने वाले मनोहर रूप का वर्णन किया है। जैसे इसी श्लोक में देख लीजिए कि कृष्ण वेणुवादन में तत्पर है वहां पर, और वह वेणु रमणीय स्वर के संयोग से समस्त चेतन पदार्थ के चित्त हरण करती है। इसलिए आप वृंदावन में अभी भी जाएंगे तो देखेंगे कि कई पहाड़ों पे भगवान के चरण चिन्ह, गायों के चरण चिन्ह, बांसुरी, भगवान के मोर पिच्छ, उनके चिन्ह आपको पहाड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर दिखाई देते हैं, आज भी 5000 वर्ष पश्चात भी। क्यों? क्योंकि भगवान के रूप की मोहकता इतनी थी कि स्थावर जो वस्तु थी वो जंगम हो जाती थी, यानी पत्थर जब भगवान वेणुवादन करते थे तो पत्थर बहना शुरू कर देते थे, और उसी के कारण भगवान के चरणों में बहते बहते जब भगवान वेणुवादन बंद कर देते तो वहीं पे रुक जाते थे। तो भगवान के चरणों के चिन्ह, उनके साथ जो गायें हैं उनके चरणों के चिन्ह, उनके साथ जो मोर है उनके चरणों के चिन्ह, उनकी बांसुरी, कई बार उनका मुकुट वहां पर रखा, उसका सारे चिन्ह उन पत्थरों पर आज भी दिखाई देते आपको। तो ये है भगवान के रमणीय वेणुवादन स्वरों के परिणाम। और अगर हम स्निग्धता के बारे में विचार करेंगे कि जो कमल की स्निग्धता है वैसी ही भगवान के नयन द्वय की स्निग्धता है, स्निग्ध नयन है उनके, इतने चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उनकी दृष्टि जो है वो करुणा भरी है। ऐसी करुणा भरी जो चिन्मय दृष्टि है वो सबके हृदय की पीड़ा को हरण करने वाली है। और मस्तक पे उन्होंने क्या धारण किया है? मयूर पुच्छ के भांति शिरो आभूषण उन्होंने धारण किया हुआ, और नील मेघ के समान उनकी स्निग्ध कांति है। और कैसे इतने सुंदर शब्दों में वर्णन किया जाता है कि श्यामल सुंदर उनका चारु दर्शन है। इस जड़ जगत में कंदर्प के द्वारा निर्मित पुष्प, यानी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखने के पश्चात मन उनको देखने के लिए बार बार लालायित होता है। तो सोचो कि ऐसे सौंदर्य को निर्माण करने वाले कामदेव कंदर्प जो है वे भगवान की इस शोभा के सामने करोड़ों करोड़ों गुना परास्त है। तो ऐसे सबके मन को मोहित करने वाले कृष्ण जो कि मोहन स्वरूप है, क्या उनके उस मोहनता का, उनकी मोहकता का वर्णन हम कर पाएंगे? क्या कि संभव है क्या हमें? इसीलिए ब्रह्मा जी जैसे श्रेष्ठ भक्तों से हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा हमारे लिए तो अकल्पनीय है। फिर आगे जाके ब्रह्मा जी और विस्तार से हमें बताते हैं कि कैसा है भगवान का रूप, कितना सुशोभित है। वे कहते हैं, आलोल चंद्र कल सत्व नमाल्यवंशी रत्नांगदं प्रणय केली कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललित नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो आलोल चंद्रक लसद वनमाल्य वंशी रत्नागनम, यानी दोदुल्यमान चंद्रक अथा मयूर पुच्छ वनमाला वंशीय और रत्नांगद द्वारा सुशोभित है। ये भगवान के अलग अलग आभूषण है जो उन्होंने धारण किए, उनका वर्णन यहां पे कहते हैं। और प्रणय केली कला विलासम, और वे कैसे हैं? तो प्रणय केली में या प्रणय केली की जो कला है उसमें विलास करने में वे निपुण है। और ऐसे श्याम वर्ण त्रिभंग ललित, ललित जिनका त्रिभंग है और नियत प्रकाश नित्य प्रकाशमान है, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। आप सोचिए, ऐसे सौंदर्य को जब हम देखेंगे तो क्या संभव है कि इस भौतिक जगत के किसी सौंदर्य के प्रति हम आकर्षित हो सके। नित्य रूप से मन में अगर इन सौंदर्यों, इस सौंदर्य के वर्णन का अगर चिंतन हम करते रहे तो क्या किसी भौतिक जगत की सुंदरता से हम आकर्षित हो सकते हैं? भगवान के इस अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन करते हैं और भगवान के इस वर्णन को सुनते भी रहते हैं उनके अनन्य भक्तगण। इसलिए श्रुतियों में कहा गया है, गो गोप गोपी गवान्वितम सुरद्रुमतलमाश्रितम दिव्य अलंकारणोपेतम रत्न पंकज मध्यगाम। जो गोप गोपी गो आदि से परिवृत्त है, जो अपने को गोपन रखते हैं, इस अर्थ से गोप है, और गोप कहने से श्रीदामादि सखागण, गोपी शब्द से माया अथवा श्रीराधा आदि गोपीगण, गो शब्द से वेद अथवा कपिला आदि गोवे, ये जिनका आश्रय लिए हुए हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण सबके आश्रित है, और इसलिए चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री श्री राधा गोविंद का वर्णन आता है कि श्री दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रमदा श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। ज्योतिर्मय शोभा विशिष्ट वृंदावन के कल्प वृक्ष के नीचे रत्न मंदिरास्थ सिंहासन के ऊपर विराजमान श्री श्री राधा गोविंद की प्रिय सखियों से सेवा कर रही है, मैं उनका स्मरण कर रहा हूं। और श्री रूप गोस्वामी भी सुंदर वर्णन कहते हैं, वे कहते हैं, महेंद्र मणि मुंजत लद्यति मिर कुंद मकन कुंद स्मित स्फुरट पूरट केतकी कुसुम रम्य पट्ट पटांबर स्त्रल्लद सुरगर स्थल वक्वणित वेणुरत्रा ब्रजन वज्रादघ हरो हरत्याह न सखीना मनः। जिनकी अंग कांति इंद्र नील मणि की अपेक्षा भी सुंदरतर है, अधर में कुंद कुसुम की भांति अत्यंत शुभ्र हास्य है, परिधान में फुल सुवर्ण केतकी भांति रम्य पट्ट पटांबर धारण किया हुआ है, और वनमाला से वक्षस्थल मनोज्ञ, ऐसे श्रीहरि ब्रज में मुरली वादन करते हुए हम सबके चित्त को हरण कर रहे हैं। तो वेणुकुणंदम अरविंद दलाय दक्ष, देखिए अपनी सुंदर वेणु पे वादन करते हुए भगवान की जो सुंदरता है उसका अनुपम वर्णन यहां पे किया गया। फिर आगे एक श्लोक में वे एक आश्चर्य की बात हमें बताते हैं, और वो क्या है? वे कहते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्द चिन्मय सदुच्फल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वे यहां पे कहते हैं कि उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं जिनका श्री विग्रह आनंदमय चिन्मय और सतमय होने के कारण परम उज्ज्वल है। जिस श्री विग्रह के सारे अंग अर्थात प्रत्येक इंद्रिय समस्त इंद्रियों की सारी वृत्तियों से संपन्न है और जो चिद चिद अनंत जगत समूह का नित्य दर्शन पालन और नियमन करते हैं। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात वे बताते हैं कि भगवान के सारे अंग अर्थात प्रत्येक इंद्रिय समस्त इंद्रियों की सारी वृत्तियों से संपन्न है, यानी एक अंग दूसरे अंग के अन्य सभी अंगों के कार्य करने में समर्थ है। और इसलिए श्रुति कहती है कि सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम। यहां पे कहते हैं कि जगंती अर्थात अपने लीला परिकरों में उनके भावानुरूप अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं तथा अपने अंगों से उन परोकरों की रस चमत्कारिकता का आस्वादन करते हैं। यह सब कुछ उनके श्री विग्रह के विलक्षण प्रभाव से ही संपन्न होता है। देखो, इस भौतिक जगत में हमारे एक अंग से हम उस अंग का ही कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान जैसे यहां पे शुरू में ही बताते हैं कि भगवान कैसे हैं कि उनकी आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रह है। आनंद है, चिन्मय है और परम उज्ज्वल विग्रह है। क्यों? क्योंकि पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। किसी भी अंग से किसी दूसरे अंग का वे कार्य कर सकते हैं। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं तो अपने आंखों से ही, अपने दृष्टि से ही उस भोग को वे ग्रहण करते हैं। भौतिकवादी लोग इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए वो कहते कि ये सब माइथोलॉजी है, दीज आर नॉट फैक्ट्स बट जस्ट फिक्शंस, केवल कल्पनाएं हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि ऐसे कम बुद्धि के जो भांड रहते हैं, जिनकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है, वे क्या इन वेद स्तुतियों में वर्णन किए गए भगवान के सुंदर रूप का आस्वादन कर सके? क्या संभव है उनको? नहीं है। इसलिए कहा गया कि श्रुतिर्न शक्य, श्रुतियों के द्वारा भगवान को जानना संभव नहीं है। तर्को न प्रतिष्ठा, तर्क के द्वारा भी उनको जानना संभव नहीं। तो कैसे जानना है? तो महाजनों के द्वारा उनके उन्होंने जो वर्णन किया है वो सुनो और भगवान को जानो, अन्यथा हमारे शक्ति के या हमारे शक्ति से यह संभव ही नहीं है कि हम भगवान को जान पाए। फिर आगे जाके 33वें श्लोक में भक्तजनों को क्या लाभ प्राप्त होता है उसका वर्णन किया गया है और उसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि आज के जो हमने श्लोक देखे 29 से लेकर 32 तक, तो 29वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं हमें यहां पे कि भगवान का जो धाम है और उनकी जो लीलाएं क्या है उसका वर्णन 29वें श्लोक में करते हैं, जो कि चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, यानी भगवान उस चिंतामणि धाम में नित्य रूप से गोचारण लीला तथा भगवान की जो अंतरंग लीला है गोपियों के साथ उसमें वे कैसे अनुरक्त हैं। फिर आगे के श्लोक में बताते हैं कि भगवान की जो शाश्वत वेणु माधुरी है और रूप माधुरी है कि वेणुम कुणंदम अरविंद दलायताक्ष, उसका वर्णन करते हैं। और फिर 31वें श्लोक में भगवान के लीला विलास का वर्णन करते हैं कि आलोल चंद्रकल सद्वन माल्यम सिमरत्नाम गलम प्रणय प्रणय केली कला विलास, कि भगवान कैसे प्रणय कला में निपुण है, तो भगवान की जो विलासिकता है उसका वर्णन करते हैं। और फिर 32वें श्लोक में भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है, कौन सी है वह अचिंत्य शक्ति? कि अंगान यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति, वे अपने अंग प्रत्यंगों से एक अंग का कार्य दूसरे अंग से बहुत उत्तम रूप से करते हैं। और इसके कई सारे उदाहरण हैं। और इसलिए श्रुतियां भी कहती कि सर्वतो पानी पादम सर्वतो शिरो अक्षी, कि भगवान के सब जगह पे हाथ है, सब जगह पे पैर है और सब जगह पे उनकी आंखें हैं जो सब कुछ वे करते रहते हैं। तो उसी ऐसे जो दिव्य भगवान है तो भक्तों के लिए उनका सुलभत्व कैसे है? क्या ऐसे भगवान भक्तजनों के लिए सुलभता से प्राप्त होते हैं? उसका वर्णन आगे के श्लोक में आएगा, 33वें श्लोक में, और उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसका श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि इन दिव्य रत्नों को, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि भगवान की स्तुतियां यानी रत्नों की खान है और रत्न पार की भक्त है। अगर उनसे हम इस रत्नों के बारे में सुनेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा क्या रत्न है, और उन रत्नों से हम अपने आप को सुशोभित करेंगे। वाणी की सुशोभित करना है, वाणी को सुशोभित करना है तो उसका आभूषण क्या है? ये उत्तम श्लोक है। भगवान को भी उत्तम श्लोक कहा जाता है और उनके बारे में जो श्लोक लिखे गए उनको भी उत्तम श्लोक कहा गया है। ये उत्तम शब्द का अर्थ क्या है? उत्तम, जो हमें तमोगुण से ऊपर उठाता है वो है उत्तम। और भगवान कौन है? उत्तम श्लोक, वे श्लोक जो हमें तमोगुण से ऊपर उठाते हैं, उन श्लोकों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है उनको उत्तम श्लोक कहा जाता है। और ऐसे श्लोकों की रचना वही कर सकते हैं जो उत्तम है, जो तमोगुण से ऊपर उठे, और वे भक्त लोग कि जिनको इस जड़ जंजाल से, इस भौतिक जगत के जड़ता से कोई भी लेना देना नहीं है, वे पूरी तरह से अपने मन प्राण सबको भगवान पे केंद्रित करते हैं। ऐसे भगवत भावना भावित भक्तों से भगवान के बारे में सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय पूरी तरह से हम भगवान को समर्पित कर पाएंगे। तो आइए इन सुंदर श्लोकों का रसास्वादन करते हैं और अपने इस बुद्धि को प्रबुद्ध बनाते हैं और हृदय को इतना सुलभ कर लेते हैं कि जैसे कहा जाता है कि भगवान का नाम माखन चोर है, नवनीत चोर है। क्या चोरी करते हैं वे? तो वे चोरी करते हैं नवनीत को, माखन को। तो आइए इस हृदय को माखन बनाए ताकि भगवान इस हृदय को चोरी कर ले। और ये माखन कब बनता है? अगर आपको माखन बनाना है तो उसकी विधि क्या है? दूध उबालो, थोड़ा सा उसे घन स्वरूप दे दो, फिर उसका दही लगा दो, दही लगाने के पश्चात फिर उसको मथो। जब मथोगे उसको तब जाके उसमें से नवनीत निकलेगा, माखन निकलेगा। तो इस हृदय को भी हमें मथना है। और कैसे मथेंगे इसको? तो भगवत भक्तों के द्वारा की गई कथा का श्रवण करने के पश्चात ही इस हृदय का मंथन होता है। जब मंथन होता है तो पीड़ा तो होती है, इसीलिए कई बार कथा सुनने के पश्चात हमें लगता है आज बहुत ही प्रखरता से बताया गया है और बहुत ही कठिन है इन चीजों से, लेकिन आप जब तक सुनोगे नहीं, अपने मन को अपने हृदय को मथोगे नहीं, तब तक नवनीत नहीं बनेगा और ना ही ये माखन चोर फिर आपके हृदय को चुरा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कहा जाता है कि व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, व्रज में कौन प्रसिद्ध है? तो नवनीत की चोरी करने वाला। इसलिए हर भक्त कोई चाहता है कि वो अपने हृदय को नवनीत बनाए ताकि भगवान उसका उसके हृदय को चुरा ले। वही तो जीवन का ध्येय है कि मन बुद्धि सब कुछ भगवान की सेवा में लग जाए। तो आइए प्रयास करते हैं अपने इस मन को और हृदय को मथने का और नवनीत बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ऐसे ही कल हम चर्चा करेंगे भगवान के भक्त जन लभत्व के बारे में और फिर भगवान का जो अचिंत्य ध्यान तत्व है उसकी हम चर्चा करेंगे। कल के लिए ये हम दो श्लोक, तीन श्लोक देखेंगे कि जिसमें भक्तों के लिए क्या सुलभ है, फिर जो अचिंत्य तत्व है भगवान का, खास करके ध्यान योग का अवलंबन करने वाले जो जीव है उनके लिए क्या प्राप्ति होती है, और गौड़ीय सिद्धांत का सार सर्वत्र जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, जो कि श्री ब्रह्मा जी ने अपने इन सुंदर स्तुतियों में वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।